एकेत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकेत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने मतलब हाल के सालों में काफी हलचल मचाई है और कई जरूरी बहसों को भी जन्म दिया है।
हाँ बिल्कुल, किताब का नाम है ऑफ बॉयज एंड मेन और लेखक है रिचर्ड रीव्स।
हाँ, और ये किताब उन मुश्किलों को देखती है जो आजकल खासकर डेवलप्ड सोसाइटीज में लड़के और पुरुष फेस कर रहे हैं, है ना?
बिल्कुल, चाहे वो एजुकेशन में उनका प्रदर्शन हो या फिर जॉब मार्केट जो बदल रहा है या फिर परिवार में उनका रोल, कई जगहों पर एक तरह का आप कह सकते हैं संकट सा दिख रहा है।
और ये सिर्फ उनका पर्सनल मामला तो नहीं है, जाहिर है इसका असर तो पूरे समाज पर है, इकोनॉमी, सोशल स्टेबिलिटी, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स पर भी।
सही बात है, और रीव्स की कोशिश यही है कि इस सेंसिटिव टॉपिक को सिर्फ इमोशनल बहसों से हटाकर फैक्ट्स और डेटा की रोशनी में देखा जाए।
तो चलिए पहले लेखक को थोड़ा जान लेते हैं, रिचर्ड वी रीव्स। ये कोई आम कमेंटेटर तो नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वॉशिंगटन डीसी में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन है ना, काफी प्रेस्टीजियस थिंक टैंक, वहाँ सीनियर फेलो हैं और वहाँ फ्यूचर ऑफ द मिडिल क्लास इनिशिएटिव को डायरेक्ट भी करते हैं।
अच्छा,
और वो मूल रूप से यूके के हैं शायद?
हाँ, ब्रिटेन के हैं और सोशल पॉलिसी, इकोनॉमिक, सोशल मोबिलिटी, इन सब विषयों के काफी गहरे जानकार हैं। पॉलिसी मेकिंग का भी अनुभव है उन्हें, वो ब्रिटेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के स्ट्रैटेजी डायरेक्टर भी रह चुके हैं।
तो मतलब एक सॉलिड बैकग्राउंड है, ये जरूरी इसलिए है
क्योंकि
हाँ क्योंकि वो एक मेन स्ट्रीम नॉन पार्टिसन जगह से आ रहे हैं, तो उनकी बातों को ऐसे ही खारिज करना मुश्किल है। वो इस मुद्दे को किसी खास आइडियोलॉजी या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से निकालकर एक बड़े मतलब सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के फ्रेमवर्क में रखते हैं।
और ये भी दिलचस्प है कि वो खुद तीन बेटों के पिता हैं।
हाँ, तो किताब में सिर्फ अकादमिक एनालिसिस नहीं है, एक पर्सनल टच, एक सहानुभूति भी महसूस होती है। वो सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करते, उसके पीछे के इंसानी पहलू को भी समझते हैं।
तो ये किताब ऑफ बॉयज एंड मेन आखिर कहना क्या चाहती है, इसका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है?
देखो, इसका मूल तर्क ये है कि मॉडर्न डेवलप्ड सोसाइटीज में लड़के और पुरुष तीन खास एरियाज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और फैमिली लाइफ, इनमें गहरे स्ट्रक्चरल संकट से गुजर रहे हैं।
स्ट्रक्चरल, इस शब्द पर जोर देना जरूरी है ना? मतलब ये उनकी कोई पर्सनल कमी नहीं है?
बिल्कुल नहीं। रीव्स साफ कहते हैं कि पुरुषों की कोई व्यक्तिगत नाकामी नहीं है और ना ही ये विमेन प्रोग्रेस के खिलाफ कोई रिएक्शन है, बल्कि ये समाज में जो बड़े इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल बदलाव आए हैं उनका नतीजा है।
अच्छा, तो बदलावों ने पुरुषों के जो ट्रेडिशनल रोल्स थे
हाँ
उनको काफी हद तक इरेलेवेंट बना दिया है,
लेकिन उनकी जगह कोई साफ पॉजिटिव प्रैक्टिकल रोल अभी तक ठीक से उभरा नहीं है।
समझी, तो किताब पहले प्रॉब्लम बताती है, फिर कारण और फिर सोल्यूशन।
एग्जैक्टली, पहले आंकड़ों से प्रॉब्लम की गंभीरता दिखाते हैं। जैसे अमेरिका में कॉलेज डिग्री लेने वालों में अब लगभग 60% लड़कियां हैं, लड़के पीछे छूट रहे हैं।
और सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं,
नहीं इकोनॉमिक फ्रंट पर भी, खासकर वो पुरुष जिनके पास कॉलेज डिग्री नहीं है, उनकी रियल इनकम दशकों से या तो बड़ी नहीं है या कम हुई है। और फिर सोशल इंडिकेटर्स हैं, सुइसाइड, नशा, बेघर होना, इन सब में पुरुषों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है।
हाँ, ये तो काफी सीरियस पैटर्न लगता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि एक बड़ा इशू।
बिल्कुल, और रीव्स इसे सिस्टमैटिक इश्यूज से जोड़ते हैं, जैसे एजुकेशन में ये गैप तो बचपन से ही दिखने लगता है।
हाँ, सुना है लड़कों में ADHD जैसे डायग्नोसिस ज्यादा होते हैं।
हाँ, या ध्यान भटकना, होमवर्क न करना, ग्रेड्स का माना, ये सब आम है। रीव्स का तर्क है कि हमारी जो आजकल की एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें शांत बैठना, सुनना, वर्बल स्किल्स पर जोर है, वो शायद अनजाने में लड़कियों के नेचुरल डेवलपमेंट पैटर्न के ज्यादा अनुकूल है।
और यहीं पे वो बायोलॉजिकल डिफरेंस वाली बात आती है, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है?
है, और रीव्स इसे बहुत सावधानी से उठाते हैं। वो साफ कहते हैं कि बायोलॉजी डेस्टिनी नहीं है और ये सेक्सिज्म को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ एवरेज न्यूरोसाइंस के अंतरों को इग्नोर करना भी ठीक नहीं, खासकर पॉलिसी बनाते वक्त।
जैसे?
कोई उदाहरण?
जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट, ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। एवरेज पर ये लड़कों में लड़कियों के मुकाबले थोड़ा देर से मैच्योर होता है, लगभग 2 साल का फर्क हो सकता है।
अच्छा, तो जब स्कूल एक खास लेवल का सेल्फ कंट्रोल एक्सपेक्ट करता है तो कई लड़के शायद डेवलपमेंटली उतने तैयार नहीं होते। हाँ बिल्कुल, तो ये प्रॉब्लम को लड़के की शरारत से हटाकर सिस्टम के साथ फिटमेंट पर ले आता है। लेकिन हाँ, खतरा हमेशा रहता है कि लोग इसे स्टीरियोटाइप बनाने के लिए इस्तेमाल ना कर लें।
रीव्स इस खतरे को मानते हैं?
हाँ, वो मानते हैं। और उनका जोर इस बात पर है कि इन एवरेज अंतरों का मतलब ये नहीं कि सारे लड़के एक जैसे या सारी लड़कियां एक जैसी हैं। मतलब ये है कि सिस्टम को ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच काम नहीं करता।
ठीक है, एजुकेशन के बाद दूसरा बड़ा एरिया था रोजगार।
हाँ, यहाँ बात होती है ट्रेडिशनल मर्दाना इंडस्ट्रीज की, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमेशन, ग्लोबलाइजेशन। इनकी वजह से इनमें नौकरियां कम हुई हैं।
और ये नौकरियां सिर्फ पैसे का मामला नहीं थी, है ना?
बिल्कुल नहीं, ये उन पुरुषों को जिनके पास शायद कॉलेज डिग्री नहीं थी एक आइडेंटिटी देती थी, सोशल रिस्पेक्ट, एक तरह की कमैरिडरी। इनके जाने से एक खालीपन आया है।
और नई नौकरियां कहाँ आ रही हैं?
सर्विस सेक्टर, हाँ सर्विस सेक्टर, या फिर वो हील सेक्टर्स, हेल्थ, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेसी, और इन सेक्टर्स में ट्रेडिशनली महिलाओं का डोमिनेंस रहा है।
तो पुरुषों के लिए इन सेक्टर्स में जाना मुश्किल है, कल्चरल बैरियर भी होंगे।
हाँ, कुछ प्रैक्टिकल और कुछ कल्चरल, जैसे नर्स या प्राइमरी टीचर बनने में सामाजिक झिझक। नतीजा ये है कि कई पुरुष आर्थिक रूप से पीछे छूट रहे हैं या उन्हें दिशा नहीं मिल रही।
और तीसरा एरिया परिवार और पिता का रोल।
हाँ, ब्रेडविनर वाला जो पारंपरिक रोल था वो अब कमजोर पड़ गया है, क्योंकि महिलाएं भी कमा रही हैं, आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तो पिता का रोल थोड़ा एम्बिग्यूअस, मतलब अस्पष्ट सा हो गया है।
लेकिन रीव्स इसे सिर्फ प्रॉब्लम नहीं मानते।
नहीं, वो इसे एक अवसर की तरह भी देखते हैं। रिसर्च बार बार दिखाती है कि बच्चों की डेवलपमेंट के लिए पिता का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कितना जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई में मदद हो, खेलना हो, इमोशनल सपोर्ट हो।
पर समाज ने अभी तक इस नए रोल को पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया है, जैसे पैटर्निटी लीव वगैरह।
एग्जैक्टली, स्ट्रक्चरल सपोर्ट और कल्चरल एक्सेप्टेंस दोनों की कमी है।
तो ये तो हुई प्रॉब्लम और कारण, अब आते हैं सॉल्यूशंस पर। वो रेड शर्टिंग बॉयज वाला आइडिया क्या है?
हाँ, ये काफी चर्चा में रहा। इसका मतलब है लड़कों की फॉर्मल स्कूलिंग एक साल देर से शुरू करना। तर्क ये है कि इससे उनके दिमाग को मैच्योर होने का थोड़ा और टाइम मिलेगा और वो स्कूल की डिमांड्स के लिए बेहतर तैयार होंगे।
सुनने में लॉजिकल है, पर इसके नेगेटिव साइड भी तो हो सकते हैं, जैसे बच्चे पर स्लो का लेबल लगना या सोशल डिवाइड बढ़ना।
हाँ, ये चिंताएं जायज हैं, और रीव्स भी मानते हैं कि इसे कैसे लागू करना है इस पर सोचना होगा। शायद ये एक ऑप्शन हो, मैंडेटरी ना हो। मेन पॉइंट ये है कि हमें ये मानना होगा कि सारे बच्चे एक ही उम्र में स्कूल रेडी नहीं होते।
ठीक है, और रोजगार के लिए वो HEL सेक्टर्स वाली बात।
हाँ, उनका सुझाव है कि जैसे लड़कियों को स्टेम में लाने के लिए इतने एफर्ट्स हुए, स्कॉलरशिप्स, कैंपेन्स, वैसा ही कुछ पुरुषों को हील सेक्टर्स में लाने के लिए होना चाहिए।
मतलब नर्स, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए पुरुषों को एनकरेज करना।
बिल्कुल, इसके लिए टारगेटेड स्कॉलरशिप्स, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, और सबसे जरूरी, इन प्रोफेशन से जुड़े सोशल स्टिग्मा को तोड़ना होगा। ये सोचना कि केयर गिविंग सिर्फ महिलाओं का काम है, ये बदलना होगा। ये बड़ा कल्चरल शिफ्ट है, टाइम लगेगा इसमें।
और परिवार के लिए पिता के रोल को कैसे देखते हैं वो?
वो कहते हैं कि पिता के रोल को माँ के साथ रिश्ते से इंडिपेंडेंट, एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह फिर से डिफाइन करने की जरूरत है।
इसका मतलब लीगल राइट्स?
हाँ, पिताओं के लीगल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मजबूत करना, खासकर सेपरेशन या डाइवोर्स के केस में, को पेरेंटिंग को बढ़ावा देना, और कल्चरली एक्टिव फादरहुड को सेलिब्रेट करना। वो यूज इट और लूज इट, पैटर्निटी लीव जैसी पॉलिसीज की भी बात करते हैं।
तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो की मैसेजेस क्या हैं? पहला तो ये कि ये प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है, पर्सनल नहीं।
हाँ।
पुरुषों की स्ट्रगल उनकी नाकामी नहीं, बल्कि बदलते समाज का नतीजा है, जिसके साथ हमारे इंस्टीट्यूशंस और मैस्कुलिनिटी के पुराने आइडियाज तालमेल नहीं बिठा पाए।
बिल्कुल।
दूसरा, जेंडर इक्वालिटी टू वे स्ट्रीट है।
बिल्कुल।
महिलाओं की बाधाएं हटाना जरूरी था और है, पर अब उन एरियाज पर भी ध्यान देना होगा जहां लड़के और पुरुष पीछे हैं। ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। भारत जैसे देश में ये बात शायद थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगे, जहां महिलाओं के लिए अभी भी बहुत संघर्ष है, पर रीव्स का पॉइंट है कि दोनों साथ चल सकते हैं।
तीसरा, बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात सावधानी से करनी होगी।
हाँ, एवरेज अंतरों को मानना स्टीरियोटाइप बनाना नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल ज्यादा फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाने के लिए होना चाहिए।
चौथा, नॉन कॉलेज एजुकेटेड पुरुषों का आर्थिक संघर्ष। ये एक बड़ी जड़ है। सही बात है, ट्रेडिशनल जॉब्स के जाने से जो खालीपन आया है उसे भरने के लिए नए रास्ते चाहिए, शायद हेल्थ सेक्टर्स या स्किल डेवलपमेंट। हमारे यहाँ भी स्किल इंडिया जैसी पहले हैं, उन्हें शायद इस नजरिए से भी देखना चाहिए।
और पांचवा, फादरहुड को रीडिफाइन करने की जरूरत, सिर्फ कमाने वाला नहीं।
हाँ, बल्कि एक एक्टिव केयरिंग रोल, ये ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि खुद पुरुषों के लिए भी मीनिंग और सेटिस्फैक्शन का सोर्स बन सकता है।
रीव बार बार कहते हैं कि इस मुद्दे पर पोलराइजेशन से बचना है।
हाँ, ना तो इसे फेमिनिज्म पर अटैक की तरह देखो, ना ही प्रॉब्लम को सिरे से नकारो। एक प्रैक्टिकल, एम्पैथेटिक और एविडेंस बेस्ड अप्रोच चाहिए।
किताब में कुछ कोट्स भी दमदार हैं, जैसे वो कहते हैं, समस्या ये नहीं कि पुरुष विफल हो रहे हैं, बल्कि ये है कि दुनिया बदल गई है और वे तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रहे हैं। चुनौती उनकी मदद करना है, उन्हें डांटना नहीं।
हाँ, ये पूरी टोन सेट कर देता है। ब्लेम से हटकर सॉल्यूशन पर फोकस, या फिर वो टू वे स्ट्रीट वाली बात।
अब हमें उन क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा जहाँ लड़के और पुरुष पीछे रह रहे हैं।
हाँ, ये पुरुषों की मदद को इक्वालिटी के बड़े गोल से जुड़ता है, और वो हील बनाम स्टेम वाला तर्क भी
बहुत प्रैक्टिकल है।
जैसे लड़कियों को स्टेम में लाने के लिए प्रयास हुए, वैसे ही पुरुषों को हील में लाने के लिए महत्वाकांक्षी पहल की आवश्यकता है। एक जानी पहचानी स्ट्रेटेजी को नई प्रॉब्लम पर अप्लाई करना।
और आखिर में वो चेतावनी की,
लड़कों और पुरुषों की समस्याओं को नजरअंदाज करने से नारीवाद मजबूत नहीं होता, बल्कि ये हमलों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। मतलब एक इंक्लूसिव अप्रोच ही लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है पेरेंट्स के लिए?
और शायद बेटे के स्कूल एडमिशन के सही टाइम पर सोचना, या स्कूल में ऐसे माहौल की वकालत करना जो लड़कों की एनर्जी और लर्निंग स्टाइल के लिए बेहतर हो, जैसे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स।
टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए,
पुरुष टीचर्स की भर्ती खासकर प्राइमरी में, और डिसिप्लिन को देखने का तरीका बदलना, लड़कों की नॉर्मल एक्टिविटी को प्रॉब्लम ना समझना।
एम्प्लॉयर्स के लिए, हील में पुरुषों की हायरिंग और पटर्निटी लीव।
हाँ, और एक ऐसी वर्क कल्चर बनाना जो वर्किंग फादर्स को सपोर्ट करे, और रीस्किलिंग पे फोकस करना क्योंकि जॉब मार्केट बदल रहा है।
और पॉलिसी लेवल पर रेड शर्टिंग या मेन इन हील जैसे पायलट प्रोजेक्ट्स, नेशनल पटर्निटी लीव, फैमिली लॉ रिफॉर्म्स।
बिल्कुल, ये सब ठोस कदम हो सकते हैं।
मेरे लिए तो सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि फैक्ट्स और डेटा के बेस पर बात करना कितना जरूरी है। पुरुषों की प्रॉब्लम्स को अक्सर या तो इग्नोर किया जाता है या फिर कल्चर वॉर का हिस्सा बना दिया जाता है।
सही बात है, रीव्स का काम दिखाता है कि ये एक गंभीर स्ट्रक्चरल इशू है।
और मुझे ये अच्छा लगा कि वो सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ते, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं।
हाँ, और ऐसे सॉल्यूशंस जो पॉलिटिकल डिवाइड से ऊपर उठते हैं, रेड शर्टिंग, मेन इन हील, ये दिखाते हैं कि पॉजिटिव चेंज पॉसिबल है, और फादरहुड को रीडिफाइन करने का आइडिया तो वाकई बहुत पावरफुल है, फ्यूचर के लिए एक नई सोच देता है।
बिल्कुल, शायद असली चैलेंज यही है कि हम जेंडर इक्वालिटी को जीरो सम गेम की तरह देखना बंद करें, कि एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा।
हाँ, रीव्स हमें एक ऐसे फ्यूचर की तरफ सोचने को कहते हैं जहां दोनों जेंडर्स की यूनिक चैलेंजेस को समझा जाए और सबको आगे बढ़ने में मदद मिले।
और ये भी सोचना जरूरी है कि अगर इन इश्यूज को एड्रेस नहीं किया तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, बढ़ता हुआ असंतोष, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, फैमिलीज का टूटना।
हाँ, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।